आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। शिष्य गुरुपाद पद परमारागतम शिष्य गुरुपाद पद में किया है अच्छी कृपा से। शिष्य राधा गोविंद जी की कृपा से हम लोगों का आज तीन दिन निर्विघ्न रूप में और अच्छी तरह से संपन्न हुआ। आज हम लोग चौथे दिन श्रीमद्भागवत दशम स्कंध को प्रारंभ कर रहे हैं। दशम स्कंध में हम लोग चार दिन लगाएंगे। आज 16 तारीख है, 16, 17, 18 और 19 चार दिन लगे और 20 तारीख को हम लोग एकादश और द्वादश स्कंधों के उपदेशों का वर्णन करें। इसके बाद में 21 तारीख को हवन इत्यादि का कार्य संपन्न होगा। वैष्णव और ब्राह्मण और वैष्णवी सब लोगों का जैसे प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था है। अब तक हम लोग नौ स्कंद तक हम लोगों ने श्रवण किया। नौ स्कंद तक की कथा संसार की आसक्ति को दूर कर रही थी और मैं यह शरीर नहीं हूं ये बतलाने के लिए हुआ। मैं आत्मा हूं, भगवान का दास। यदि भागवत सुनने से दशम नौ स्कंध तक यदि यह बात समझ में आई कि ये संसार आसार पुरुंजन का उपाख्यान, अवास्तवी का आपका उपाख्यान, कपिल और देवदूति का संवाद, वृतासुर का संवाद, ये सब चीजें संसार को समझाने के लिए और आत्मतत्व की उपलब्धि के लिए। यदि संसार में ही आसक्ति लगी रही और भगवान की कथाओं में रुचि नहीं हुई, भगवान हमारे आराध्य हैं इस चीज की अनुभूति नहीं हुई, तो दशम स्कंध सुनने का अधिकार नहीं है। ये समझ लो, एक साथ में गाल फुलाना और हंसना ये संभव पर नहीं है। देख लो, हंसो भी और गाल फुलाओ एक साथ, ये संभव नहीं है। एक म्यान में दो तलवार भी नहीं आती। इसलिए जहां पर संसार की कामना और आसक्ति है वहां पर कृष्ण भी नहीं आएंगे और भगवान की कथा तो कृष्ण है इसलिए वो भी है। दोनों एक साथ में नहीं चले, एक कमता जाएगा एक बढ़ता जाएगा। संसार की आसक्ति क्रमशः धीरे धीरे कमती जाएगी और भगवान की प्रति, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती जाएगी। दशम स्कंध नौवे स्कंध तक की कथाओं में ये आया कि हम जितने हैं ये जीव है, ब्रह्म के अंश हैं, जीव ब्रह्म नहीं है। पहले तो ये सब, दूसरी बात, जितने भी संसार में देवता देवी हैं, शंकर जी ब्रह्मा जी से लेकर दुर्गा से लेकर के गणेश जी, कार्तिकेय जी और 56 करोड़ देवता इत्यादि हैं, वो भगवान के अधिकृत दास हैं। ये कृष्ण ही सब में शक्ति संचार कर उनमें जगत की सृष्टि, जगत का पालन पोषण और ध्वंस इत्यादि करने का भार उन पर दिया है। इंद्र भी उनके आधिकारिक देवता हैं। इसी से समझो दर्शन स्कंद में कुछ और भी लीलाएं आएंगी और इसमें सब आई हैं। देखो जैसे और भी तो बात क्या है, हरिहर एक आत्मा है, वो भी वृंदावन में गोपी बनकर और राधा कृष्ण के दर्शनों की ललका से वृंदावन आ रहे हैं और गोपियां उनको भी निकाल बाहर कर दिया, दो चार गुलछे लगा दिए, जब रोने लगे तब बड़ी मुश्किल से उनको उसमें दर्शन करने के लिए बहुत धूप से स्थान मिला। वृंदावन रसमयी भूमि है, शंकर जी कैलाश में रहे और चाहे काशी में रहे, सब समय कृष्ण का ध्यान करते हैं, राम नाम के बल पर सबको मुक्ति दिला देते हैं। जब कोई मरने के लिए गया काशी में करवट लेने के लिए, तो शंकर जी उनको कान में वृंदावन रसमयी भूमि है, कैलाश इत्यादि कुछ साधन भूमि है, कैलाश बद्री इत्यादि ये सब साधन भूमि, वहां पर साधन कुछ किया जा सकता। एक बूढ़ी आती वहां पर राष्ट्रपति कहीं सी सभा में आने वाले थे, बुढ़िया ने देखा कि हम राष्ट्रपति को देखें, उसकी लालसा बड़े बड़े अफसर लोग गवर्नर से लेकर के बड़े बड़े लोग राष्ट्रपति को देखने के लिए आए। उसमें आईजी डीआईजी और सब लोग चारों तरफ से पहरा देने के लिए, बुढ़िया ने जबकि वो आगे राष्ट्रपति, बुढ़िया ने देखा जो दरोगा वहां के हैं वो सब प्रशासन कर रहा है, सब हुक्म दे रहा है, इधर लोगों को हटा रहा है, उधर हटा रहा है। उन्होंने देखा जैसे यही राष्ट्रपति है, क्योंकि ये इतना शासन कर रहा है, सबको डांट रहा है, दबक रहा है, सब लोग उसके बारे में घर दर्द हो रहे हैं। और राष्ट्रपति तो शादी पोशाक में साधारण रूप से आया, उसको वो समझ नहीं सके, उसी को राष्ट्रपति समझ करके उनको प्रणाम करें, यही राष्ट्रपति। ऐसे जिनों को आइडिया नहीं है भगवत तत्व का, वो कृष्ण वृंदावन में राग करते हैं, गोपियों को लेकर के नृत्य करते हैं, भक्तों की चरण पादुका को अपने सिर पर रखते हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये परम तत्व नहीं है, परम तत्व ब्रह्मा जी है, परम तत्व गणेश जी हैं, परम तत्व कार्तिकेय जी हैं या शंकर जी हैं, तो ब्रह्मा इत्यादि को मान लेते हैं। किंतु वृंदावन में अभी सती का उपाख्यान हम लोगों ने वर्णन किया है, उसमें शंकर जी के तत्वों का हम लोगों ने वर्णन किया है। जे वो दास हैं, अधिक दास भगवान उनमें शक्ति संचयित करके और ये सब काम करा लेते हैं, वैसे ब्रह्मा जी से भी कभी कभी शंकर जी जीव तत्व होते हैं, कभी ब्रह्मा जी जीव तत्व होते हैं। जब जीव तत्व योग्य नहीं मिलते तो प्रभु अपनी शक्ति का आवेश करा करके गुणावतार में के रूप में उन लोगों के द्वारा ये कार्य करा लेते। श्रीमद्भागवत यदि अच्छी तरह से नहीं पढ़े तो ये सब तत्वों का ज्ञान नहीं मिलता। ये श्रीमद्भागवत वेद शास्त्रों के बनने के बाद में, महाभारत के बनने के बाद में, पुराणों के बनने के बाद में, अंत में व्यास जी ने सबका सार मंथन करके तब ये श्रीमद्भागवत को बताया। इसलिए श्रीमद्भागवत ही प्रमाण है इस सभी से। अब इस लीला में हम दिखलाएंगे जब कृष्ण जब अपनी माता के गर्भ में आए तो जितने देवता लोग हैं ब्रह्मा शंकर और सब सरस्वती इत्यादि सब गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ न सके गोचार के लीला में कुछ बाधा उत्पन्न की और फिर जब उनका दर्शन करके तब उनको प्रणाम इत्यादि करने लगे। इंद्र भी ऐसे ही सबको शासन करते हैं, जगत के वो शासक हैं। उन्होंने समझा कि मैं ही सबका मालूम हूं, इसलिए गोवर्धन की पूजा जब भी कृष्ण ने ब्रजवासियों से कराई तो बिगड़ गए। वर्षा की बिजली गिराई, कृष्ण ने सबकी रक्षा करी, तब उनका मोह भंग हुआ। वास्तविक में ये जो रासलीला इत्यादि है क्या? अभी कल हम लोगों ने ये बतलाया शंकर जी पीस पान कर लिए तो भगवान से बोले, प्रभु से, प्रभु मैं आपका मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता, कहीं खबरदार मत करो, मोहिनी रूप ठीक नहीं है, उसमें सभी लोग मोहित हो जाते हैं, मत दे। शंकर जी ने प्रभु आपकी जब कृपा है यदि बीस पान करा दिया हमसे तो ऐसा भी हो जाएगा हम बच गए, आपकी कृपा जरूर हमारे ऊपर। कहे तू नहीं मानेगा तो नहीं हमको दर्शन करा दिया। आप लोगों ने सुना कैसे सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, जिसमें देवताओं को बांट रहे हैं ना, उस समय पहले ही इन्होंने कहा देवताओं से और दानों से, देखो तुम लोग हमको मध्यस्थ करके इस अमृत को बांटने के लिए दे रहे हैं। मैं तो कुंता नारी हूं, कुंता नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नदी की धार पर, नदी की तो धारा प्रवाहित है, कब किधर में मुड़ेगी कोई ठीक नहीं, और बिना लगाम का घोड़ा किधर जाएगा उसका ठीक नहीं, और उल्टा नारी का भी कोई ठीक नहीं, कितने लोगों को चौपट कर दे। तो मैं उल्टा नारी हूं, आप लोग तो देवता दानव हैं, बड़े धर्मात्मा आप लोग हैं, हमारे ऊपर में क्यों विश्वास करते हैं? किंतु उसकी एक मुस्कान पर अपने सवाल कर चुके थे, कहने तो नहीं हम जो कुछ तू करेगी ठीक है, कहे ऐसे प्रतिज्ञा करो हम जो कुछ करेंगे किसको देंगी नहीं देंगी मैं अपने विचार से दूंगी, उसमें तुम लोग चुपचाप बैठे रहना, हस्तक्षेप करना मत करना। उनको अपने बातों से मोहिनी ने बांध दिया, वैसा ही रूप ठीक प्रकट किया और हम अपना अवस्था कपड़े भी अंग से हट गए, इस प्रकार से फूलों को ले रही है। शंकर जी देख करके एकदम मत वाले हो गए, उसको पकड़ने के लिए दौड़े और वो भागी, उसका रहा सा कपड़ा भी गिर गया। एकदम शंकर जी ऐसे पागल हो गए समझ न सके, पार्वती जी ने उनको मना किया, अरे ये क्या कर रहे हो, नहीं मैं। अंत में प्रभु की जब कृपा हुई, उन्होंने अपना रूप छिपा लिया जब और माया हटाई, तब झट उनके आंख, अरे ये देखो तो कामदेव को मैंने भस्म कर दिया, किंतु आज प्रभु का मोहिनी रूप दे करके आज मैं कुछ भी नहीं कर सका। वो भी उस मोहिनी के रूप में मोहित हो गए। माया ऐसी है, भगवान की ऐसी बलवती माया है, इन नौ की तो बात क्या, बलदेव प्रभु वो भी डूब गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और बच्चों को हरण कर लिया, सखाऊ एक वर्ष तक कृष्ण स्वयं समस्त गोप गोपनीय बच्चे और बछड़े बन करके रहे और उनको पता नहीं लग सका, कृष्ण को ही कृष्ण का पता नहीं चला। बलदेव भी कृष्ण ही है किंतु अपने स्वरूप को लोग नहीं जान सके, और ये सब लोगों की तो बात ही क्या है। इसलिए ये जो है कामदेव शंकर जी को भी मोहित कर देते हैं, ब्रह्मा जी भी मुग्ध हो गए, एक बालिका बनाई और कारण देकर के आकर्षित हो गए, मरीची के लड़कों ने हंस दिया। इस तरह से ब्रह्मा शंकर इंद्र प्रभृति की तो बात के लिए सबको नचा दिया काम ने, ये कृष्ण किंतु ऐसे ये कामदेव पर उनकी विजय की दीजा है। लाखों करोड़ों परम सुंदरी विश्व की स्त्रियां देवताओं से भी सुंदरी वैकुंठ की दक्षिणी से भी नाच रही है, एकदम निर्जन प्रदेश जमुना जी कलकल करके बह रहे हैं, शीतलबंध सुगंध आधी रात का समय, और कृष्ण ने हाथ जोड़कर उनसे कहा गोपियों अपने घर को लौट जाए, ऐसा कौन कह सकता है वो कृष्ण के अंदर। इसलिए इनकी काम पर भी जाए हमारे जितने भी टीकाकार भाग रखे हैं उन लोगों ने यह सब बताया, काम पर किसी ने नहीं विजय पाया किंतु काम पर भी कृष्ण ने विजय पाया। इसलिए कृष्ण भगवान स्वयं भगवान है और बाकी देवता लोग उनके आधिकारिक देवता हैं, दास हैं और जो अपना अवतार है सबसे मूल अवतार ही कृष्ण है। इन सब चीजों का वर्णन हम लोग इसके माध्यम से करेंगे। हम लोग प्रतिदिन चेष्टा करेंगे ये चार दिन के अंदर में श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद सुना, इसमें हम लोग पूर्वार्ध 47 अध्याय उसमें हम लोग विशेष समय देंगे। इधर इसमें ही उनकी अधिक लीलाएं हैं ब्रज की और द्वारका की लीलाओं को संक्षेप में हम लोग वर्णन करेंगे, नहीं तो संभव कर। इसके बाद में कभी भागवत हम लोग करेंगे तो एक महीने के लिए रखेंगे जिससे सब अच्छी तरह से उसका हम लोग विचार करें, किंतु गृहस्थ लोगों को इतना धैर्य नहीं है। ये तो बड़ी मुश्किल से 7 दिन के बाद में 9 दिन किया, इसी में त्राही त्राही मच रही है, और एक महीना करेंगे तो ना तब हाँ एक इच्छा। अच्छा तो ठीक है, उसके लिए तैयार नहीं दिया। मैं सोच रहा हूं ये मलमास का महीना आ रहा है, भादुर का महीना, उसमें शुभ कर्मों का कोई अनुष्ठान नहीं होता, केवल भगवत भक्ति का होती है। मुझे इसके लिए जगन्नाथपुरी एक महीना के लिए हम लोग को निर्धारित कर दिया जाए। जब मैं नहीं किया, मैं सोच रहा हूं एक महीना चैतन्य महाप्रभु की दोनों शाम और सुबह की लीला हम लोग यहां पर प्रारंभ करेंगे। यदि किसी कारण से नहीं किया आप सब लोग एक महीने के लिए तैयार, चैतन्य महाप्रभु की लीला का हम लोग बढ़ेंगे। यहां के लोगों को महाप्रभु की लीला में बहुत ही स्वाभाविक रुचि है और बिना महाप्रभु की लीला समझे लिए कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं होगा, इसलिए ये सब लीलाओं का हम लोग वर्णन करेंगे। और भागवत सचमुच में उद्धव जी ने एक महीना तक कहा था तब कुछ कुछ उसका वर्णन हो सकता है, केवल ऐसे पढ़ गए ऐसे पढ़ने से। अब हम लोग आज यहां की लीला हम लोग दशम स्कंद की और कल प्राय हो गई है 9 स्कंद तक, यदि कुछ बचा होगा तो उसका, नहीं तो दशम स्कंद से हम लोग लीला ये चंद्रवंश में कृष्ण जी यहां से हम लोग करेंगे। आप उसको सावधानी पूर्वक श्रवण करेंगे और कथा के बाद भी आप लोग जाएंगे मत, कथा के बाद में कुछ अनुष्ठान होंगे और उसके बाद में प्रसाद की भी सेवा। कृष्ण के पूर्वजों का वंश का वर्णन करूंगा।
अजामिल इनके वंश में, जदू के वंश में अजामिल। आप लोगों ने सुना जदू जी कैसे भक्त थे। पिता ने आदेश दिया कि तुम अपना यौवन हमको दे दो और हमारी बुढ़ावस्था ले दो, और कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें लौटा दूंगा और तुम फिर जवान हो जाएगा, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। पिता के लिए इतना तो करो। उन्होंने कहा मैं अपनी युवावस्था संसार भोगने के लिए नहीं दूंगा, यदि भगवत भजन करने के लिए कहते तो मैं अभी आपको दूंगा, किंतु आप भोग करेंगे विषयों का और आप भी नरक जाएंगे, हमको भी नरक ले जाएंगे, इसके लिए मैं नहीं देगा। आप लोगों को याद होगा ब्रह्मा जी ने भी सनक सनंदन सनातन को और नारद जी को ऐसे ही कहा था, अरे तुम लोग जाओ प्रजा उत्पन्न करो। उन्होंने कहा पिताजी आपका ये आदेश हम नहीं पालन करते, हम तो भगवान का भजन करें। इसी तरह से जिनके प्रिय न राम वेदे ही तजे को बेरी समझद परमसने भी, हमारा जीवन ये भगवान के सेवा के लिए कर उसके लिए हमने दिया है और किसी काम के लिए नहीं। जिनको कृष्ण और राम प्यारे नहीं है उन लोगों के लिए नहीं, इसलिए उनका मंगल ही हुआ। सनंदन सनातन नारद जी का और ये जदू, इसीलिए जदू के ऋणी हो गए भगवान और बोलेंगे तुम्हारी वंश में आएंगे हम। उन्होंने कह दिया था जैसे अब तुम्हारे वंश न तो तुम राजा होगा न तुम्हारे वंश का कोई भी राजा होगा, कहे वो मत तू राजा, ठीक है ये मेरे लिए गौरव की बात हो, मैं राज्य को एकदम तिनके समान छोड़ दूंगा। छोड़ दिया, कृष्ण उनके वंश में आए। यहां बतला रहे थे कैसे आए, जब उनके बाद में धीरे धीरे और सब पुत्र हुए, उनके पुत्रों के पुत्रों का एक पुत्र हुआ, उसका नाम अजामिल हुआ। अजामिल के दो स्त्रियां थी, एक थी क्षत्रियानी और दूसरी थी वैश्य माने गोकुल की। तो क्षत्रियानी से सूरसेन का जन्म हुआ और जो गोपी थी उसके पुत्र हुए पर्जन्य महाराज। पर्जन्य के लड़के हुए नंद बाबा और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव महाराज। एक से चला अजामिल, उनके दो पुत्र सूरसेन और पर्जन्य, फिर पर्जन्य के लड़के हो गए इधर नंद बाबा और सूरसेन के हो गए वसुदेव, ये दोनों भाई हुए। और कृष्ण ने क्या किया, चतुराई से नंद के भी बेटे बने और वसुदेव के भी बेटे बने, दोनों को फिर एक कर दिया। उनका ये रखने के लिए भाव वसुदेव जी के यहां संत चक्र गदा पद्म लेकर के मथुरा में आदिभूत हुए, किंतु गर्भ से नहीं, गर्भ में कुछ दिन रहे, किंतु जैसे खंभे से नृसिंह जी पैदा हुए ऐसे संत चक्र गदा पद्म लेकर के 16 वर्ष के पुत्र जैसे उनका नख भी था, उनके केस नहीं होना चाहिए, केस भी है, मोर पे मुकुट है उनका और समस्त अलंकारों को धारण किए हुए हैं। ये वहां पर जेल खाने में वसुदेव जी के और वही नंद बाबा के यहां उसी रात में आधी रात के समय में 16 कलाओं से परिपूर्ण, द्वादश रसों से पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में वहां आए। दोनों ने उनको अपना अपना पुत्र माना और फिर वहां से एक होकर, इस प्रकार से कृष्ण जदुवंश में आए और जदुवंश में होने पर भी नंद बाबा के भी वंश जदुवंश कहलाता है और सूरसेन वाला भी वो कहलाता है। इसलिए सब लोगों की इच्छा पूर्ण हुई और कृष्ण ने ऐसे भी लाया। अब आगे आप लोग सुन, भक्त लोग उनका अवतार बहुत जल्दी चाहे। ऐसा कौन सा उपाय किया गया जो भगवान का जल्दी से जल्दी जन्म हो जाए? बिना भगवत कृष्ण के उनका जन्म नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोग मिलकर के भगवान का नाम का कीर्तन कीजिए, जैसे कि जल्दी से जल्दी उनका आविर्भाव हो। बोलो गौ प्रणामे। खूब ध्यान देकर के सुनेंगे। वसुदेव महाराज जी बड़े चतुर बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ थे। आप लोगों ने सुना टेपू को मारने के लिए उद्यत हुआ, भूम की रात लगाम जी सांस से उसने पकड़ा था और एक हाथ में कोड़े थे। आकाशवाणी सुनते ही वह उछल करके उसे कूद गया और दाहिने हाथ से तलवार ले ली और बाएं हाथ से उनका केस पकड़ लिया। और मरने वाला ही था, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब यही नहीं रहेगी मैया तो बेटा क्या होगा, बस एकदम ध्वंस कर दो। किंतु बस देव महाराज जी ने बड़ी चतुरता से सहिष्णुता से उसको रोका और उसको समझा रहे हैं। श्रीमान सुरासंद जी ने आप लोगों को कुछ बतलाया, दो एक बातें जो विशेष है उसको मैं बतला रहा हूं। वसुदेव जी ने सोचा क्यों न मैं प्रतिज्ञा कर लूं जो जितने लड़के होंगे तुम इसको मार डालना, एक एक बच्चा होता जाएगा मैं तुमको देता जाऊंगा, मेरे पर में विश्वास रखो, मेरा नाम वासुदेव है, वसुदेव है। वसुदेव किसको कहते हैं? जो शुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित होता है, सदा सत्य बोलता है, कभी भी इसमें मिथ्या इत्यादि में नहीं रहता है। इसलिए हमारे ऊपर में तू विश्वास कर, मैं प्रत्येक पुत्र होगा देऊंगा। क्यों उन्होंने प्रतिज्ञा की? प्रतिज्ञा की उन्होंने सोचा भाई ये कंस है, हमारे बच्चे होने के पहले ही यदि वो मर गया तो कोई जरूरी है कि वो जीवित रहेगा ही? कितने लोग, हजारों लोग मरते हैं। अभी हमारे बच्चे होने में कम से कम कितना दिन अभी है? एक वर्ष तो लगेगा ही, अभी तो विवाह करके जा रहे हैं। 10 महीने तो वो गर्भ धारण करेगी, तो साथ ही साथ तो गर्भ धारण नहीं करेगी। एक वर्ष का समय हमको कम से कम ये मिल गया एक बच्चे के लिए। इसी में यदि वो मर गया नेता ही बन गया, सब हमारा काम बन गया। दूसरी बात, यदि लड़का होना ही है जरूर होगा, क्यों? आकाशवाणी माने भगवान की वाणी है, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। ये कंस महादुष्ट है, उसको दैव वाणी के ऊपर में विश्वास तो हुआ कि ये मर गई, इसीलिए तो इसको मारना चाहता है। किंतु अर्थ कुकुटी न्याय माने मुर्गी का आधा भाग मानेंगे जो अंडा देती है, और जो नहीं देती उसको नहीं मानेंगे। एक ही मुर्गी का दो भाग कर दिया। ऐसे ही ये कंस सोच रहा है, मैंने दैव वाणी सुनी और इसी का बच्चा तो हमें मारेगा, आत्मा गर्भ का संतान। अच्छा तो ठीक है, मैं इसको मार डालू, इस पर विश्वास हुआ। किंतु दैववाणी जो पूरी शक्ति होती है उसको ये विश्वास नहीं हुआ, सोचा जब मैं इसको मार दूंगा दैववाणी झूठी हो जाएगी, इसलिए दैववाणी को झूठा करना चाहता है। यही इसी को कहते हैं नास्तिक, आधा विश्वास करते हैं आधा विश्वास नहीं करते। वो एकदम विश्वास नहीं करने वालों की अपेक्षा भी ये बदतर है, इसलिए उसको विश्वास नहीं हुआ। किंतु वसुदेव महाराज जी को पूर्ण विश्वास हुआ, कभी ये मार नहीं सकता। क्यों? दैववाणी ने जब कहा है तो कोई न कोई सूरत रास्ता निकल आएगा ही, इसलिए हमको इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और प्रयत्न होने पर भी यदि मेरी बात नहीं होती है उसके लिए हमारा दोष नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है मैं अपने बच्चों को दे दूंगा, यदि किसी कारण से ये मर गया तो बात ही खत्म, यदि नहीं मरा भी तो बात असत्य नहीं होगी, जरूर उसके बच्चे होंगे और आपको मिल करके ही इसको मारेंगे, इसलिए कोई चिंता नहीं। अब कहा तो दो हम ये हम बच्चों को दे देंगे। वो उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और उनकी बातों को मान लिया, तब युक्ति में वो नहीं चल सका। मान लिया, मानने के बाद में उनको छोड़ दिया, बड़े आराम के साथ में कहा कि अच्छा अब इनको ले जाओ। अब उनकी तो छुट्टी हो गई कितने दिन के लिए, जब तक कि बच्चा नहीं होता है। छुट्टी हो गई, वहां पर जितने वसुदेव के इष्ट मित्र थे और भक्त लोग थे बड़े आनंद में विभोर हो गए, और आनंद में विभोर होने पर उसकी कैसे अभिव्यक्ति होती है कीर्तन के माध्यम से। अब कीर्तन जरा एक इसमें सुन लीजिए।
सदरे स्वयं भगवान कृष्णचंद्र जी के आविर्भाव के प्रसंग में लीला कथा हुई। अधिकांश लोग यही जानते हैं कि कृष्ण का जन्म कारागार में देवी वसुदेव से हुआ। अधिकांश विशेष करके मथुरा के बड़े बड़े विद्वान माइक नहीं हो रहा है तो कहां गए ठीक नहीं अभी सुनाई पड़ रहा है। तो सवेरे श्रीमद् भागवत से हम लोगों ने कृष्णचंद्र के आविर्भाव की लीला हम लोगों ने सुनाई। अधिकांश लोग यही समझते हैं कि कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में देवकी के घर से वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ, ऐसा ही लोग जानते हैं। यहां तक कि मथुरा के भी 99% जितने बड़े 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 विद्वान लोग हैं और विश्व के जितने विद्वान लोग हैं वो लोग यही जानते हैं कि जो कृष्ण मथुरा में ही कारागार में देवकी के गर्भ से पैदा हुए। कौन लोग ये कहते हैं जिनको कृष्ण लीला का उतना ज्ञान नहीं है, और की तो बात क्या, उद्धव जो ब्रज में गए थे और अपूर्व जो ब्रज में गए थे गोपियों से बहुत सी बातें सुनी, तो अभी उद्धव जी को ये विश्वास नहीं हुआ कि ये नंद और यशोदा के जन्म। इधर रहने के बाद भी वो यही समझे कि ये देवकी के गर्भ से मथुरा में इनका जन्म हुआ है, ये वसुदेव नंदन वासुदेव। तो और लोगों की तो बात क्या, साधारण लोगों की है, किंतु ब्रज के कोई भी हो नंद यशोदा सखा लोग सखियां लोग उन्होंने अपनी आंखों से जो देखी तो दूसरे के कहने पर क्यों विश्वास कर। उन्होंने देखा यशोदा के गर्भ से उनका जन्म हो रहा है, यशोदा का जयकारण है वैसा ही है,
बल्कि वसुदेव जी और देवकी दोनों ही गोरे थे और यशोदा जी श्याम जी कृष्ण के रंग थे और यहां तक कि हरिवंश पुराण इत्यादि में भी ऐसा लिखा गया है, श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही लिखा है, किंतु आंख चाहिए देखने के लिए, बिना वैसी गुरु कृपा से वैसी आंख नहीं होने से इन चीजों को नहीं समझ सकते। कृष्ण स्वयं भगवान है, वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है, जिसमें 16-12 कलाएं कही जाती है। कलाएं माने होता है रस। इस दृष्टि से हमारे आचार्यों ने, गोस्वामियों ने इस बात को कहा, जैसे वो यशोदा के पुत्र हैं, यशोदा जी खड़ी होकर के कह रही हैं, ये मेरा पुत्र है, और वहां पर जितनी ब्रजगोपियां थी और उधर में श्रीमती राधिका जी, ललिता जी, विशाखा जी कह रही हैं, ये यशोदा के पुत्र हूं, और अज्ञान उद्धव कह रहे हो कि ये देवकी वसुदेव के पुत्र है, कौन सा प्रमाणिक बात होगा? राधा जी की बात प्रणामिक प्रमाणिक होगी और यशोदा जी की, नहीं इनकी, राधा जी की, क्योंकि वो स्वरूप शक्ति है। दूसरी बात, अभी श्लोक आएगा जिसमें कहेंगे नंदा तू आत्मजुतपन्ने जाता लाद महामना, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने करे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को। परीक्षित महाराज जी वसुदेव नंदन कृष्ण के वो वंश परंपरा में, देवी जी
दूसरी तरफ में सुभद्रा जी कृष्ण की बहन है और सुभद्रा के पुत्र हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु से परीक्षित, इसलिए ये द्वारकाधीश के संबंध में ये लोग हैं। इसलिए परीक्षित को खुश करने के लिए पहले तो उन्होंने जब तक होश था ये कहा कि ये कपूर होकर के यहां पर कारागार में देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में करने के, उनको प्रसन्न करने के, किंतु जब एकदम भावाविष्ट हो गए, लीला कथा में एकदम डूब गए, जब बाह्य बुद्धि नहीं रही, तो स्वाभाविक जो असली चीज थी वो अपने आप उनके मुख से निकल गई। नंदस्तु आत्मजुत बनने, अर्थ इसका है नंद भी ही क्यों लगाया वहां पर, तू क्यों लगाया? इसलिए लगाया, अरे अंश रूप में देवी और वसुदेव के रूप में, के पुत्र के रूप में चतुर्भुज वहां पर प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान के रूप में, नरलीला के रूप में नहीं। इसलिए उनके आंशिक पुत्र हैं, इनका गर्भ से जन्म, गर्भ में तो थे किंतु गर्भ से जन्म नहीं हुआ, लीला नहीं हुई, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बड़े बड़े केश झुंभरा ले, 16 वर्ष की उम्र जैसे सोने के मुकुट, सोने की करधनी, हाथ में सोने के कंगन इत्यादि लेकर के, ऐसा बच्चा नहीं। इसलिए भगवान स्वयं वसुदेव देवकी के पूर्व जन्म की बातों को लेकर उन्होंने वो तपस्या की थी, सुतपा और कृष्ण उनको उन्होंने बल दिया था कि मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहां, किंतु प्रेम नहीं मांगा था, नमुक्ति मांगी, इसलिए पुत्र के रूप में किंतु नहीं भगवान के रूप में उनके घर में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अधिकारी जैसे कौशल्या के घर में ना चार पूजाओं को धारण करके प्रकट हो गए, ऐसे इनके घर में जन्म नहीं हुई, इसलिए यहां पर स्वरूप को लेकर के आए और हाथ जोड़ करके देव वसुदेव प्रार्थना कर रहे हैं। किंतु ब्रज में क्या हुआ, जिस समय कृष्ण पैदा हुए ठीक उसी समय समम सुसु आदे, हरिवंश में ऐसा लिखा, हरिवंश पुराण में, जिस समय देवकी को के सामने भगवान प्रकट हुए, फिर उसी समय में आदिदास के समय इनको एक पुत्र हुआ, श्यामलाका छोटा था, वो कृष्ण नकली जाति था, उनके गर्भ से पैदा हुए। यशोदा जी को मीठी मीठी कुछ मीठा मीठा कुछ प्रशान भाव, उसमें थोड़ी सी मुक्खा का भाव न समझ सके, और उसके आठ घंटा के बाद में 15 मिनट के बाद में एक लड़की पैदा हुई जोग माया, इसलिए वहां पर जमज संतान हुआ यशोदा जी, और उनको पुत्र हुआ। अब सुखदेव गोस्वामी के कथन का तात्पर्य क्या है, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज कहते हैं आत्मा से जो जन्म लेता है, देशी वसुदेव के लिए ये नहीं कहा गया, किंतु उनके लिए कहा आत्मा से जो जन्म होता है अपने से उसको कहते हैं पुत्र, आत्मज, दूसरे के पुत्र को नहीं आत्मज कहने, आत्मा वही जाए थे, एक व्यक्ति ही पुत्र के रूप में स्वयं जन्म ग्रहण करता है, पिता ही पुत्र के रूप में वहां पर जन्म ग्रहण करता है, उसी का अंश है जन्म, इसलिए नंद भी और यशोदा भी मैंने वहां पर जैसे उनका हुआ वैसे ही तू इनका यहां पर जन्म हुआ, वहां पर जन्म नहीं हुआ किंतु इनका जन्म हुआ। दूसरी बात बड़े मार्के की है, उसी श्लोक में आगे कहा गया कार्यानाश, उनका जो सौर इत्यादि का कार्य होता है जात कर्म जिसको कहते हैं, जात कर्म माने जन्म होने का कर्म, अर्थात माता से और पुत्र का जो संबंध होता है नारी छेद इत्यादि जिसको कहते हैं, यहां पर गोकुल भेद हुआ, यहां नंद यहां पर मथुरा में उनका कोई नारी छेद इत्यादि का मामला, क्योंकि वो 16 वर्ष जैसे पैदा हुए और ये लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, और वहां पर उनका नारी छेद जात कर्म सवेरे हुआ, सब ब्रजवासी लोग आए, जात कर्म हुआ नारी सती और उनको संस्कार हुआ, दान इत्यादि लाखों लाखों दान का ये सब दान हुआ, वहां पर कोई संस्कार भी नहीं हुआ और संभव कर नहीं था कि वहां पर दान सुनने चाहिए यहां पर, और भी आगे चल करके बहुत से ऐसे लोग हैं, नमो थके अग्र पपुषे तल दंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल लतन मुखाय पन्नत्र जे कौल प्रवेशान रेणु लक्ष्मा श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाय, पशुपांग जाय पशु प अंग जाय, जायते पशु कहते हैं गायों को, पौ माने उसका पालन करने वाले, गायों का पालन करने वाले ब्रजेंद्र हैं नंद बाबा, और उस पशु को पशुओं को पालन करने वाले नंद बाबा के अंग से जो जिनका जन्म हुआ पशुपांग जाय, यहां पर वैसे कहा वसुदेव देवी के लिए ये कहीं भी प्रयोग पा, और भी कहते हैं नफल गोपी का नंदनो कुमार अखिल देही नाम अंतरा, नफल आप ये सत्य सत्य करके बतलाइए, आप यशोदा के पुत्र नहीं है, जरूर पुत्र वहां पर देवी वसुदेव के लिए कहा गया जन्म बाधव देवकी जन्म बाधव, जन्म वासो देव की जन्म बाधव जगबर परिषद स्वयं दुर्भिरक्षण भरण फिर विजिनना पुष्मित श्री मुखेन प्रजपुर बनता नाम वर्धयन काम है, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो वहां पर प्रणाम कैसे करते हैं, आप
देवकी और वसुदेव के पुत्र नहीं, ये तो बात है, बाद में विवाद का विषय है। ऐसे लोग कहते हैं ये प्रवाद, लोग कहते हैं, कौन कहते हैं? मथुरा के बड़े बड़े ब्राह्मण लोग कहते हैं। इसलिए कहते हैं दक्षिणा के लिए उनको दक्षिणा मिलनी चाहिए, वो जिसके पुत्र को किसका पुत्र बना देंगे, और नहीं तो हम कह देंगे दक्षिणा दे दे, वो कह देंगे ये एकादशी केवल विधवा के लिए सभा, वो भी दक्षिणा लेकर के कह देंगे। और राजाओं को निकालते हैं तो वो सब कर देंगे, कह देंगे नहीं राजा महाराजा को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसे ही एकादशी व्रत को उपस्थान है ब्राह्मण को दे दिया दक्षिणा, और कहने में एकादशी व्रत नहीं है, सदवा नहीं करेगी और राजा लोग भी नहीं करेंगे, वो जब स्त्रियां मर जाती हैं कोई काम की नहीं रह जाती है वो कोई करेंगी, और बलिष्ठ युवक ये सब नहीं करेंगे, वो ब्राह्मण जिनको खाना पीना नहीं मिलता है निर्धन है, जो कोई काम करें वो लोग करेंगे, ऐसे ऐसे वो लोग कह देंगे। पुत्री तो पीछे हुई ना, पहले पुत्र हुआ, पहले जिस समय देवकी को वही तो कहा था मैंने, जैसे वो कुछ निश्चित हो गई योग माया ने उनका ऐसा कर दिया, जैसे वो समझ नहीं सकी हमको कन्या हुई कि कन्या पुत्र दोनों हुआ कि क्या हुआ। पीछे जब की नाव खुली या कथाइया आ गई थी ना, वो सब तो सो रहे थे मीठी मीठी ऐसी गोल माया की पूजा, पीछे जब सवेरे आए देखा कि ये तो पुत्र है, और उनकी क्या दौड़ करके आए देखा कि पुत्र और कन्या दोनों, इस तरह से ऐसा ये योग माया का, यही तो ऐसी चीज है जो बड़े बड़े विद्वानों के पति को भूल जाते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी जब भाव में विभोर हो गए, ये परीक्षित बैठे ये जब याद नहीं रही तो जो परम सत्य था वो उनके मुख से निकल गया, उसमें राजा परीक्षित को प्रसन्न करने की कोई भावना नहीं। इसलिए नंदस्तु आत्मदुत्पन्न और पशुपांग जाय पशुपांग जाय, ये बताया। दूसरी बात पुत्र किसका, कौन माता पिता, कर्ण को कर्ण पहला संतान का कुंती का, वो परीक्षा कर रही थी मंत्रों का, सूर्य का आवाहन किया और सूर्य आकर के प्रकट गए, और साथ ही साथ में दिव्य दृष्टि से देखा और साथ ही साथ कान से एक पुत्र पैदा हो गया। ये पुत्र पैदा लोग क्या कहेंगे, अभी मैं 1200 वर्ष की अभी किशोर लड़की हूं और मुझे पुत्र हो गया, बड़ी लज्जित थी किसी से कहा नहीं, और उसको एक बात किसी दोने में रख करके उसको नदी में, वो जमुना नदी में उसको प्रवाहित कर दिया। पीछे से एक खीवर को लिए स्त्री को वो मिला और उसने उठा करके पालन पोषण किया, फिर दुर्योधन की उस पर कृपा हुई और उसका पालन पोषण करके फिर उसको राज्य दे करके अपना मित्र बनाया। कहती है कहता है कर्ण से और कुंती का देख हो गया, कृष्ण ने भेंट कराया, उन्होंने कहा कि तू मेरा पुत्र है, तो भैया मैं तेरा पुत्र नहीं जानता हूं, तेरे कोख से मैं पैदा हुआ, किंतु तुमने तो हमको फेंक दिया, पालन पोषण किया नहीं, और जो हमारा पालन पोषण किया है तुमने फेंक दिया, उसी समय पुत्र का संबंध तो उसी समय टूट गया, और जिसने पालन पोषण किया वही हमारा माता है ना, इसलिए कभी भी उनके तरफ में नहीं गए। कृष्ण ने समझाया, पांडव ने समझाया, कौंती ने समझाया, भीष्म पितामह ने भी बतलाया अपनी प्रतिज्ञा पर। यहां पर बैठे सुनो,
बहुत
युद्ध के समय, हाँ युद्ध के समय तभी समय था जाने का, किंतु नहीं हुआ, और इसी तरह से वसुदेव देवकी ने कृष्ण को मान लिया कि कृष्ण ही का पुत्र है, वसुदेव जी के पुत्र है। अच्छी तरह से सुनना, तुम लोग सभी ब्रजवासी हो, मैं मथुरावासी भी कौन नहीं देखता, मैं सब तुम लोग ब्रज के रहने वाले और रहने वाली हो, यशोदा जी के संबंधित हो। मान लिया कि इनका पुत्र हुआ और उन्होंने बचपन में ही एक दिन का भी नहीं हुआ और उसको लेकर के दे आए गोकुल में, मान लिया जैसे ठीक है इनके पुत्र दे दिया और वहां से एक कन्या ले आए। अच्छा, अब वो कन्या को लेकर के आए और पुत्र को दे दिया, अदला पत्नी हो गई ना। यदि अंत में अपने इस लड़की को लेकर के वहां दे करके और कृष्ण को ले आते तब उनका तत्व उस पर होता, और समझ में लड़की अदल बदल हुई ना। हमने एक गाय खरीदी, उसके 5,000 मूल्य हमने दिए, गाय अपने खुद पर बांध दी। थोड़ी देर के बाद में वो आदमी आया जिसकी गाय थी, महाराज हम गाय नहीं बेचेंगे, तो नहीं बेचेगा तो तुम हमारा पैसा लौटा दो, तुम गाय ले जाओ। तो मैंने 5,000 रुपया उसे ले लिया और गाय जाओ लेकर के चला गया। वैसे ही ये लड़की के मूल्य पर अपने लड़के को दे आए, लौटाया तो नहीं, उस लड़की को लौटाया कि नहीं लौटाएगा, कोई प्रश्न नहीं है, कभी लौटाया नहीं, तो उनका कैसे सब तो बन गया जो उनका पुत्र है। लड़की लेकर के उनके हाथों में आई और कंस के हाथ में आई, आकाश मार्ग में हो गई, वो अष्टभुजा दुर्गा के रूप में हो गई, कभी लौटाने का प्रश्न नहीं हुआ। हमारा रुपया लौटा दो, आप निकाय ले जाओ, अपनी लड़की हमारी दे जाओ, अपना लड़का ले जाओ। तो कभी दिया नहीं थे, इसलिए कैसे कह सकते हैं कि हमारा पुत्र है। जल्दी को लेकर के रखते हैं तो वसुदेव की देवकी भी पैमा नहीं करते हैं, उनको लड़की पहले लौट। दूसरी बात और भी बहुत सी उसमें बात है, प्रमाण भी बहुत है। कृष्ण वहां पर एक, जबकि वो कंस ने उस लड़की का पैर पकड़ा और पत्थर के ऊपर में मारना चाहा, इतने में हाथ से वो निकल गई और निकल करके आकाश मार्ग में चली गई, एक से खड़ा है और अष्टभुजा हो गई, हाथों में त्रिशूल इत्यादि बहुत प्रकार के अस्त्र हैं। उसने एक पैर से झटका दिया कंस को और वो चारों खाने चित्त होकर के गिरा, वो तो बच गया किसी प्रकार से उनके छूने मात्र से। अजरे कंस, तू जो मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला कहीं और प्रकट हो गया, कहीं और तो काम तो जेल की बात की, वो कहते थे यहीं पर पैदा हुआ था, कहीं चला गया और पैदा हुआ, ये पैदा का शब्द वहां पर क्यों उच्चारण किया, इसलिए वहां पर पैदा हुआ। दूसरी बात, इसी को सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया इस दृश्य को, अदृष्ट अनुजा विष्णु, अर्थात वो जो दुर्गा जी थी, वो जो जिसको वसुदेव महाराज जी लाए थे, वो कन्या कंस के हाथों से निकल करके आकाश मार्ग में चली गई और अदृश्यत अंतर्ध्यान हो गई। वो कौन थी? विष्णु अनुजा, विष्णु की अनुजा। अच्छा, ये कौन विष्णु है जिनकी अनुजा, अनुजा मैंने किसको कहते हैं, अनुजा जो पीछे से जिसका जन्म हुआ, अनुजा या अनु, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के अनुज है, पीछे पता पैदा साथी है, इसलिए विष्णु की अनुजा ये कहते हुए जेठाना में वो देवी जी का जन्म हुआ, तब तो यहां के जो होते कृष्ण या अर्काधीश वाले मथुराधीश वाले, तब तो उनकी अनुजा होती मान लेते, किंतु वहां वहां पर कि सुभद्रा जी का जन्म हुआ था, सुभद्रा जी कृष्ण और बलदेव जी की अनुजा हो सकती है, किंतु वो जो देवी जो आकाश में चली गई वो उनकी अनुजा नहीं थी। किसकी अनुजा थी? कैसे? विभू को लिख नहीं सकते, इसलिए हरिवंश पुराण और दूसरे पुराण जो है वहां उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है उसके थोड़ी देर के बाद में वो पैदा हुआ।
इसलिए कृष्ण का जब यहाँ जन्म हुआ तभी उनका वहां पर नर लीलावत छोटे शिशु का जन्म हुआ ने? और थोड़ी देर के बाद ही में वो हम क्या वो देवी महाजोग माया जी का जन्म। इसके बाद में वसुदेव जी उस लड़की को लेकर के इधर में आए और कंस ने उसको छीन लिया और शिला पुष्प उसे विस्तृत अंग वो अंग जाति वो गायब हो गई अंतर ध्यान हो गई। इसलिए अनुजान ने किसकी विष्णु को विष्णु कौन कृष्णा कौन कृष्णा नंद नंदन कृष्ण। दूसरी बात जितने भी पुराण शास्त्र हैं उनमें उपनिषदों में बहुत से गोपाल पाठी इत्यादि उपनिषद हैं जो भगवान के लीला रहस्य को वर्णन करती है। उसमें उनका जो मंत्र है कृष्ण का जो मंत्र है वो कैसे मंत्र है जैसे मान लेती गोपाल मंत्र। गोपाल मंत्र में हम देवकी के पुत्र हैं इस रूप में उनका ध्यान करेंगे न किस रूप में करेंगे गोपियों के प्राण वल्लभ है ये गोपाल ये वैष्णव का प्राण मंत्र है गोपी जन वल्लभ ये गोपी के वल्लभ है गोपियों से इनका संबंध नहीं जिनके सिर पर मुकुट नहीं हाथों में बांस भी नहीं अथरों पर जो गोप का वेश नहीं है गायों को जो चराते नहीं है ब्रज से वैश का संबंध नहीं है गोपी से उनका कोई भी संबंध नहीं है। और भी गोपाल तापनी उपनिषद इत्यादि ने उनको यशोदा जी का खास पुत्र माना गया है। उसी श्लोक में जैसे जननिवास हो देवकी जन्म बाधो जदुपर पर सत्य फिर चरत जन्म सुष्मित सी मुखेना ब्रजपुर बनता नाम बढ़े ब्रजपुर के बनताओं की किशोरों के मन को हरण करने वाले ये हैं। इसलिए यहां से मथुरा से संबंध नहीं ये उस नंद नंदन के प्रकाश हैं ने? उनके अंश कहे जाएंगे क्योंकि मथुरेश जो कृष्ण है जिसमें वसुदेव भी ले जा रहे थे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की आप बच्चे हो जाइए नहीं तो कंस आकर के मारेगा उसी समय में वहां जो पैदा हुए थे गोकुल में वो थक आकर के दिव्युत को अपने अंदर में प्रवेश करा दिया किसी ने देख नहीं पाया और वही प्रकट होकर के फिर उनको वसुदेव जी ले गए उस पुत्र को रख दिया उसको देख और वही जबकि ब्रज की लीला समाप्त हो गई जब अक्रूर ला रहे थे तो रास्ते में ब्रह्म सरोवर पड़ता है जहां भास्करौल है मथुरा वृंदावन के बीच वहीं पर वो ध्यानस्थ हो गए और सरोवर में स्नान करने लगे। इतने में देखते हैं जैसे कृष्ण को जल में भी देखते हैं वहां पर भी देखते हैं और इतने में कृष्ण और बलदेव जो ब्रज वाले थे वहां से चले गए ब्रज में और जो वसुदेव नंदन कृष्ण और बलदेव थे वहां से रथ पर उनके साथ में बैठ करके चले आए। ये भी रहस्य किसी को पता नहीं जो माया के प्रभाव से ऐसा सब लोगों ने ऊपर से समझा कि यही दोनों एक ही हैं एक है ठीक है किंतु मूल तत्व कृष्ण है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। इसी दृष्टि से श्रीमद् भागवत में अनत्र सब जगह वर्णन किया गया है इसलिए वो वहां पर आ गए और कृष्ण यहां पर चले आए। ये बलदेव भी हैं वो कौन है रोहिणी के गर्भ से लिया ना देवकी के गर्भ से सातवें गर्भ में और वारोणी के गर्भ में गोकुल में वहां पर उनके गर्भ में रख दिया इसे उनका नाम संकर्षण। सातवां गर्भ पहले यहां था और उसी समय रोहिणी को भी गर्भ था एक साथ ही दोनों का गर्भ था। इस गर्भ को लेकर के रोहिणी के गर्भ में देना माने वहां पर जो बलदेव रोहिणी नंदन है उसमें ये प्रवेश कर गए जैसे यहां वाले कृष्ण को वहां ने आत्मसात कर लिया एक में मिला लिया और द्विजी रूप में हो गए ऐसे ही यहां वाले बलदेव को रोहिणी के पुत्र में मिला करके दोनों एक होकर के असल में वही बलदेव भूमि वही बलदेव के अंश हैं वाताग्नि से मथुरा कृष्ण बलदेव। इसलिए कहा गया वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति
कृष्ण जो है बलदेव की जो असल है वो कभी भी वृंदावन को छोड़कर के कभी नहीं जाते, इसलिए सब प्रकार से सामंजस्य करके आचार्यों ने भक्तों में ये स्थिर किया यथात्म यशोदा नंदन ही है और उनके अंश है ये देवती नंदन, दोनों एक ही तत्व होने पर भी रसगत खुलासा विचार, जैसे राम और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है किंतु रसगत कुछ वैशिष्ट है। अष्टमी के दिन ये पैदा हुए, अष्टमी की रात में क्यों क्यों पैदा हुए, रात अंधेरी थी ना, कृष्ण क्यों काले हुए, काले होने का भी कारण ये गाती हैं, उनको कहेंगे वो गायने पीछे अंधेरी रात की अंधेरी रात की वजह से काले हो गए, अथवा गोपियों गोपियां आंख में अंजल लगाती हैं और कृष्ण को अपने आंखों में बचाए रखती हैं इसलिए वो काले हो गए, और काली गैया का दूध पिया इसलिए काली हो गए, इसलिए कि जमुना में स्नान किया जमुना की काली है काले हो गए, या कृष्ण के वजह से स्नान करने से जमुना जी काली हो गए, ये काले हैं ना, काले किंतु टेढ़े भी हैं, इसलिए पूर्ण चंद्र के रूप में नहीं आए, ये टेढ़े के जो वक्र चंद्र के रूप में आए, जो किसी के हृदय में यदि जाएंगे तो सीधी चीज तो निकल आएगी, टेढ़ी चीज नहीं निकलेगी, इसलिए कृष्ण वक्र होकर के जन्म ग्रहण किया। इस तरह से बहुत सी चीजें हैं कृष्ण से इस सब शिक्षाओं की, समय पर हम लोग हम इन सब का वर्णन करेंगे तो प्रेम सुनेंगे और ये सब समय धारणा रहेंगे, कृष्ण जो है ये यशोदा जी के पुत्र है, किसी के सामने कभी नहीं, जिनको ये धारणा नहीं वो भले उनको माने वसुदेव ठीक है, वो लोग हमारे प्रलंब है, कृष्ण तो एक साथ में दस जगह पैदा हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं वहां पर भी हो, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी हुए वहां पर भी हुए वहां पर पूर्ण रूप से हुए यहाँ पर आंशिक उन्होंने तपस्या किया था पुत्र के लिए उनके हाथ उसमें आए और उन्होंने कहा था कि हमको प्रेम हो बात्सल्य, इसलिए बात्सल्य प्रेम के रूप में वहां पर पुत्र के रूप में और बात्सल्य प्रेम वहां पर है आस्था, इसलिए वहां पर भी प्रकट हुए। इस तरह से हम लोग आगे कृष्ण की लीला कथाओं का रसास्वादन करेंगे, समय आने पर मैं भी कुछ श्लोकों का व्याख्या कर दिया करूंगा और कृष्ण का लीला चरित्र आता आ रहा है, बड़े प्रेम के साथ में आप लोग उत्साह सकते हैं। कृष्ण की लीलाएं दो प्रकार की, एक है द्वारका की लीला और एक है ब्रज की लीला, द्वारका मथुरा की एक लीला और दूसरी है ब्रज की लीला, ब्रज लीला पहले हुई इसके बाद में मथुरा की लीला इसके बाद में द्वारका, ब्रज की लीला भी एक बाल्य काल का बचपन से तीन साढ़े तीन वर्ष तक ये गोकुल में थी और उसके बाद में साढ़े तीन से लेकर के करीब करीब आठ साढ़े आठ वर्ष तक नौ वर्ष तक ये सौबंध लीला कहलाती है, बच्चों को चराना सखाओं के साथ में खेलना और उसी समय में उनके अंदर में पूर्व राग होता है, गोपियों से प्रीति भी होती है किंतु अभी लुप्त छिप करके होती है, ये पौबंध की लीला है और इसके बाद ये प्रीति से लीला है जब सखा सखी सब तोड़ तोड़ करके ब्रज की लीला में अराज इत्यादि लीलाओं में हो जाते हैं। उद्धव के जब ब्रज में गए भ्रमण गीत का संदेश दिया उनको, वहां से फिर उत्तरार्ध की लीला समाप्त आरंभ होती है, वहीं तक की यहां तक पूर्वार्ध लीला है किशोर की लीला है, आप लोग इस सबका वर्णन खूब अच्छी तरह से ध्यान देकर के सुनेंगे। गौ प्रणामंदे तरफ तरफ में असुर लोग स्त्री पुरुष देश में सब लोगों को सताने लगे, हरे वृक्षों को काटने लगे, ब्राह्मणों को ऋषियों को मारने लगे, तो भक्तों ने देखा कि अब क्या किया जाए, तो अब कृपण करना चाहिए जिससे भगवान हमारी रक्षा करें, इसलिए उन लोगों ने कीर्तन करना आरंभ किया, आप लोग भी कीर्तन करें जैसे पुतना इत्यादि कोई ब्रज में अनिष्ट न कर सके। तो
कैलाश में शंकर जी को पता चला कि हमारे प्रभु ब्रज में भी जाया कर रहे हैं। इसके पहले की एक दिन की बात है, कंस ने देखा कि उनके जितने भेजे हुए असुर जा रहे हैं वो छोटा सा बच्चा उनको सबको मार डालता है, पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार से मारता है। कंस ने सोचा कि मैं छूट जाऊंगा, इधर देखो इधर
अरे वहां पर
भैया सोनाई क्या
बताओ जल्दी चलो हम कुछ पता करें।
तो कंस ने देखा कोई भी व्यक्ति वहां से लौट करके नहीं आ रहा, इसलिए उसने सोचा कि मैं खुद ही जाऊं और कृष्ण को किसी प्रकार से मारा।
सब लोगों का मन आकर्षण है तो ये समझो अभी एक सप्ताह जाता है, अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो
कम से कम सज धज कर और अस्त्र शस्त्र लेकर गोकुल गया, जमुना नदी को पार क्यों ही किया तो एक छोटी सी डोकरी मिली बूढ़ी, अजय तू कहां जाएगा? अजय मैं नंद भाव में जाऊंगा। इसलिए कुछ बतलाया नहीं, वो समझ गई वो जो माया थी तक बस उसको पकड़ करके और पासी में सरोवर था उसमें डुबा दिया और देखते देखते वो बूढ़ी डोकरी बन गया, सफेद केश हो गए, दांत टूट गए और एकदम दुबली पतली डोकरी सी हो गई और वो उसको पकड़ करके गोकुल में ले गई और गोबर के कंडे पाथने में उसको ऐसे ऐसे करने में लगा दी और जो कोई ब्रज से आता दो चार लाते उसको जमाता। इस प्रकार से सभी जितनी औरतें थी पूछते अपने लातों से दूसरों से उसे मारते और वो कुछ कर नहीं सकते। यदि उस रूप में मथुरा में लौट आए तो कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए लज्जा के बारे में तो मथुरा में ही आई और न तो किसी से कहा कि मैं कंस हूं और उनको मारने के लिए आया। जब बहुत दिन कुछ हो गए, पांच सात दिन हो गए तो उनको दया आई, रोने लग गया तो रोने लग गया तो जो माया फिर आई बोली जैसे तू फिर कभी ब्रज में आएगा, तू कान पकड़ के अब कभी भी मथुरा को छोड़कर के ब्रज के किसी भाग में मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने कान पकड़ करके कहा जैसे मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं जो ब्रज में कभी भी नहीं जाऊंगा, इसलिए खुद कहीं भी ब्रज में अब नहीं गया और कल को करके फिर घर में लौट आया, इसलिए कभी नहीं गया बल्कि दूसरों को भेजता रहा मरवाने की चेष्टा। शंकर जी को पता रहा ये हमारे प्रभु आराध्य देव नंद नंदन के रूप में वहां पर यशोदा जी के फॉर्म में है और बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। कैलाश से वो बैल पर चढ़कर के नंदी के ऊपर में आए, हाथों में त्रिशूल और गले में मुंड वाला और हर वेश बड़ा भयंकर वेश धारण कर, वहां पर सर्पों की माला, हाथों में कंगन भी सर्प के और कमर में करदनी भी सर्प के हैं।
और उसको लेकर के जब वहां गोकुल में आए तो वहां पर अलख अलख निरंजन अलख निरंजन करने लगे। कृष्ण को पता चला कि हमारा कोई भक्त आया है और मेरा दर्शन करना चाहता है, किंतु जसोदा मैया को पता चला कि पास में ही कोई हमारे दरवाजे पर कोई जोगी आया है और बड़ा विकराल देश है, उन्होंने घर के अंदर में छिपा दिए और कभी भी इसको नहीं दिखलाऊंगे ऐसा मनस्थ करके और घर में छिपा करके अपनी गोदी में लेकर के उसको रख लेंगे। शंकर जी को अवसर नहीं मिल रहा ये दर्शन मिले, अब वो सोचे कि कैसे दर्शन होगा, इसलिए मन ही मन में प्रार्थना है प्रभु मैं बहुत दूर से आया हूं आपकी इस बाल्य लीला का दर्शन करने के लिए, आप कृपा करके एक मिनट के लिए भी एक झलक आप दर्शन दे। कृष्ण से राम जी भी आए सोचे कि इनको किसी प्रकार से दर्शन दे, किंतु जसोदा मैया जो छोड़ नहीं गई, उन्होंने वो डमरू या डमरू बजाने लगे शंकर जी और उसी के माध्यम से कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन किए बिना यहां से हिल नहीं सकता, आप कृपा करके उसको दर्शन दे। डमरू का बजना और कृष्ण रोने लग गए, अब जसोदा मैया जितना उनको चुप कराए किंतु वो उतना ही अधिक रोने लग गए, हाथ पैर छोड़ने लगे। जो सुधा मैया ने भी कार्य कर लिए, क्या हो गया इसको, पास पड़ोस की गोपियां आ गई, बोलिए जैसे तैसे उस डूबी को दिखा दो वो वहां से चला जाए, उसने ही शायद मंत्र पर आए इसलिए ऐसा हो रहा है। अंत में जसोदा जी को जब इस प्रकार से कहा तो जसोदा जी ने कहा अच्छी बात है कि इसको दर्शन करा दूं, उन्होंने हाथों में काले धागे बांध दिए, ललाट में बहुत लंबा काला तिलक लगा दिया, आंखों में लंबी अंजन यहां तक लगा दिया, उसके थोड़ी में काला वहां पर लगा दिया, पैरों में भी काला और काले वो लकड़िया पैर में और उसमें दोनों में बांध दिए, उसको बांध दिया पैरों में उसमें और बांध करके काले कपड़े से ढक दिया और गोदी में उनको ले दिया और काले कपड़े से ढक करके जब सामने ले आई तक देख तू, फिर अभी तू चला जाएगा तो तुम यहां मैया मैं तो इसको देख करके चला जाए। बस एक झलक उन्होंने अपने अंचल को हटाया और उसको एक क्षण के लिए बस दर्शन दिया, पलक लगते और झट उसको उठक करके और घर में चली आई, ये कहीं इसकी नजर न लग जाए। ऐसे शंकर जी भी उनके दर्शनों के लिए इसी प्रकार से एक फल देखने वाली कुंजड़ी कुंजड़ी थी, वो रोज सुनती थी नंद के घर में मानव मूर्तिमान रूप धारण करके भी नजर कौन आया है, बहुत ही सुंदर लड़का है, वो रोज जाती और नंद भवन के चक्कर काटती, किंतु कृष्ण कभी सोए मिलते कभी कुछ मिलते उनका दर्शन नहीं हो पाता। अंत में उसने आज तो प्रतिज्ञा की यदि दर्शन मुझे नहीं मिला तो आज मैं आऊंगी नहीं, मैं वहीं पर उसके दरवाजे पर आ जाऊंगी और किसी न किसी प्रकार से उसका दर्शन करूंगी, ऐसा विचार स्थान करके वहीं पर फलों से भरी हुई टोकरी उतार दी और वहीं से बैठ करके थक गई। घूमते घूमते वो कहने लगी फल लो फल लो और करते 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 गोविंद लो माधव लो गोपाल लो इस प्रकार से करके बाउली।